देखिए पल्लवी, पहले तीनों मैचों में अगर आप देखें तो भारत ने 300 के करीब की लक्ष्य तो दिया था ऑस्ट्रेलिया को, पर मेरे हिसाब से ऐसा है कि भारतीय बल्लेबाजों ने इन फ्लैट पिचों पे और रन बनाने चाहिए थे। ऐसे फ्लैट पिचों में 325 330 की टारगेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भारत 300 के इर्द गिर्द रन बनाता है तो ऑस्ट्रेलिया भी वही क्षमता रखता है उस उन पिचों पर। तो मेरे हिसाब से तो ये भारतीय बल्लेबाजी की विफलता है कि आखिर के ओवर में उन्होंने 325 330 तक के टारगेट नहीं रख पाए थे। और आप देखें कि भारतीय बल्लेबाजी में वो डेप्थ नहीं रहा जो जो उनके पास पहले होता था, जिसकी वजह से उन्होंने 2011 का विश्व कप जीता था या 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी है डाउन दी ऑर्डर। हमने देखा है कि सीरीज में हमने अब तक चार डेब्यूटेंट्स देखे हैं भारत की तरफ से, और किसी हद तक तो ये सीरीज जो है उन चार डेब्यूटेंट्स और नए खिलाड़ियों को सेटल होने का मौका है। और मेरे हिसाब से जो आखिरी ओवर में हम रन नहीं बना पाए, वही नतीजा है कि हम चैलेंज नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि आप देखें ऐसे फ्लैट पिचों पे सारे लोग भारतीय गेंदबाजी को विफल मानते हैं, पर मेरे हिसाब से ऐसे फ्लैट पिचों पे 309 310 के बजाय 325 330 का टारगेट होता तो ऑस्ट्रेलिया पे उतना ज्यादा दबाव होता। मेरे हिसाब से ऐसा है कि इन पिचों पे भारतीय बल्लेबाजों को और ज्यादा रन बनाना चाहिए था। हाँ, ये कहना बहुत आसान है कि जो बना है उससे 20-25 रन और बनाना चाहिए था, पर ये भी आपको सोचना है कि जब आप भारतीय गेंदबाजी को कुछ क्रिटिसाइज करते हैं तब आपको ये भी आपको देखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी रन उतना ही दे रहे हैं जितना भारतीय गेंदबाज दे रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि भारतीय गेंदबाजी में कल जैसे मेलबर्न में जो मैच हुआ था उसमें तीन डेब्यूटेंट थे, उसमें से शरण की तीसरी मैच थी, गुरकीरत मान और ऋषि धवन अपना डेब्यू कर रहे थे, और ये लोग जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो थोड़ा ज्यादा ही होगा अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वो पहले ही मैच से परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो हमें थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट में एक नया शुरुआत है और इन नए खिलाड़ियों को थोड़ा वक्त मिलना चाहिए।
जी, तो क्या कुल मिलाकर क्या ये आकलन किया जा सकता है कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो बेहतर रही?
मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में सिर्फ बल्लेबाजी और फील्डिंग में हमसे बेहतर नजर आई, बॉलिंग में तो हम दोनों टीम एक ही लेवल पे थे। और आप ये भी देखें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में काफी प्लेयर्स नहीं हैं जो काफी इंजर्ड हैं, जैसे मिचेल स्टार्क जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉलर है उनके वो तो काफी लंबे समय के लिए बाहर है, जॉश हेजलवुड को उन्होंने छुट्टी दी हुई है, थोड़े दिनों की आराम दी हुई है। वो उसी तरह आप भारत की तरफ भी देखें तो हमारे जो प्रथम गेंदबाज है वनडे क्रिकेट में मोहम्मद शमी, वो सीरीज के शुरुआत में इंजर्ड होकर वापस चले गए, और हमने काफी नए खिलाड़ियों को नाम मौका दिया है। तो ये मैं कुल मिला के इस सीरीज को बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं मानूंगा भारत के लिए, क्योंकि आप देखिए ये वनडे सीरीज जो है ये एक मौका है, एक बायलैटरल सीरीज है, एक मौका है भारत को अपने वनडे कॉम्बिनेशन को टेस्ट करने का। वनडे क्रिकेट के यही पता है कि वो जो है वो उस वक्त के लिए हमको लगता है कि बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी और क्राइसिस है, पर हम ये भूल जाते हैं कि इंडियन क्रिकेट में वैसी क्राइसिस नहीं जैसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 हफ्ते पहले ही हम भारतीय टेस्ट क्रिकेट के महान विजय के ऊपर बात कर रहे थे जब साउथ अफ्रीका को घरेलू मैदान में हमने 3-0 में करके पछाड़ा था और वो नंबर 1 टीम थी, और सब ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका भारत पे भारी पड़ेगा भारतीय पिचों पर भारत ने उनको भी पछाड़ दिया था। और यही होता है क्रिकेट में कि हर फॉर्मेट में हर टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, और भारत के साथ भी यही हो रहा है।
जैसे कि आपने टेस्ट क्रिकेट का जिक्र किया कि विराट कोहली की कप्तानी में एक बार फिर भारत की जो टीम है वो टेस्ट रैंकिंग्स में मेरे ख्याल नंबर 1 पर पहुंच गई है, क्या आपको लगता है कि इस सीरीज के बाद, क्योंकि भारत ये सीरीज हार चुकी है, कि भारतीय टीम में कुछ फेर बदल हो सकता है खास तौर से कप्तानी को लेकर जो एक दिवसीय क्रिकेट टीम है?
देखिए पल्लवी, मेरे हिसाब से तो भारतीय वनडे क्रिकेट का कप्तान वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही विराट कोहली को बना देना चाहिए था, क्योंकि आप ये देखें कि वनडे क्रिकेट में हम जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। अगर हमें 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में या 2017 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करनी है या बिल्डअप करना है, तो मेरे हिसाब से तो विराट कोहली को तुरंत ही कप्तानी दे देना चाहिए था वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग महेंद्र सिंह धोनी मेरे हिसाब से तो 2019 वर्ल्ड कप तक तो भारतीय टीम में टिके नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी और शायद वो खुद भी बहुत जल्द अपना संन्यास देना चाहेंगे। मेरे हिसाब से इसीलिए वनडे क्रिकेट में भारतीय कप्तानी तो विराट कोहली के पास एक साल पहले ही आ जाना चाहिए था, जब हम सिडनी के मैदान पे हार गए थे सेमीफाइनल में। उसी वक्त महेंद्र सिंह धोनी को अपने आप ही वनडे क्रिकेट की कप्तानी को छोड़ देना चाहिए था। और हाँ, वो 2020 के कप्तान बने रहते, क्योंकि वर्ल्ड 2020 अभी 2 महीने में भारत में ही होने वाला है, तो तब वो उस पे कप्तानी कर सकते थे और उसके बाद 2020 की कप्तानी भी छोड़ सकते थे। पर मेरे हिसाब से हम पहले ही एक साल और लेट हो गए। क्या देखिए, ऐसा होता है कि 4 साल का मौका होता है, पर 4 साल में आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर पाएंगे, 2 साल में आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, नए नए प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं, तो और कप्तान को एक सेटल होने का मौका भी मिलेगा उस फॉर्मेट में। अब ऐसा हो गया कि पिछले 3 सीरीज में बांग्लादेश से हमारे साउथ अफ्रीका से घर पे आ रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, तो वनडे कप्तानी और वनडे टीम में बहुत बुरा असर पड़ा है, जबकि टेस्ट टीम जो है वो अलग ही पथ पे जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट अब 3 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि हमें जाना चाहिए एक ही डायरेक्शन में। पर हमारे क्रिकेट में ऐसा ही होता है कि हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, बिकॉज सिलेक्टर्स का टर्म भी सितंबर टू सितंबर होता है और सारे लोग बहुत ज्यादा सेफ होते हैं और इतना बड़ा लॉन्ग टर्म स्टेप नहीं ले पाते जितना जितना कि माइकल क्लार्क ने लिया था। वो भी उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता था 2015 का, और उसी रात को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो संन्यास ले रहे हैं वनडे क्रिकेट से, क्योंकि उनको पता था कि 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में और 2019 के विश्व कप में वो नहीं होंगे। शायद महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास तो नहीं लेना चाहिए था, पर कप्तानी से बिल्कुल स्टेप डाउन कर देना चाहिए था 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, ताकि वनडे टीम जो है वो आगे बढ़ सके और एक नए तौर पे प्लानिंग कर सके। पर खैर, एक साल देरी से सही, पर इस सीरीज के बाद भारतीय टीम का वनडे क्रिकेट 6-7 महीने तक कुछ नहीं है, तो एक मौका मिलता है महेंद्र सिंह धोनी को अपने फ्यूचर को असेस करने का, और मेरे ख्याल से वो शायद खुद ही अनाउंस कर दें कि वो वनडे कप्तानी या शायद वनडे क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं।
जी, एक आखिरी सवाल चंद्रेश आपसे कि स्टीव स्मिथ की कप्तानी के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने माइकल क्लार्क से कमान संभाली थी, क्योंकि उनका भी बल्लेबाज के तौर पर जबरदस्त प्रदर्शन रहा है और टीम भी बहुत अच्छा कर रही है।
देखिए, स्टीव स्मिथ जो है वो एक पर्पल पैच पे चल रहे हैं और उनका जो है प्रदर्शन काफी काबिले तारीफ रहा है, उन्होंने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट किया है वर्ल्ड क्रिकेट पे, और मेरे हिसाब से वो इनका जो इम्पैक्ट रहा है वर्ल्ड क्रिकेट पे और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे काफी काफी बड़ा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टीव स्मिथ आगे जाके ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के तौर पे काफी इम्पैक्ट करेंगे और काफी देर तक बने रहेंगे। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में एक चलन है कि वो बहुत जल्दी कप्तान नहीं बदलते, वो पेशेंट रहते हैं अपने कप्तान के साथ, और मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ ने उनको एक ऐसा कप्तान मिला है जो बहुत ही कम समय में काफी बढ़िया प्रदर्शन कर चुके हैं, और ऐसा लगता है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी में और ज्यादा निखरते हैं, उनमें जो एबिलिटी है, जो उनमें जो कैपेबिलिटी है, वो सामने निकल के आता है और वो एंजॉय करते हैं इस बात को, और वो जो है अभी टीम में कोई उतने बड़े सीनियर प्लेयर्स भी नहीं है जो कि जिसकी वजह से उनके ग्रोथ पे असर पड़ेगा। जॉर्ज बेली जो कप्तानी करते थे वनडे क्रिकेट में माइकल क्लार्क के जगह कभी कभार, वो भी है टीम में, पर वो भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी साइन है, काफी यंग प्लेयर्स आ रहे हैं वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, जबकि स्टीव स्मिथ जो है वो 2020 के कप्तान नहीं है, वो कप्तानी तो एरन फिंच करते हैं, पर फिर भी आप देखें कि वो एक कोहेसिवनेस है उस टीम में, और ये अच्छी साइन है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए।